पृष्ठ संख्या 165। छात्र एवं युवा वर्ग स्टूडेंट्स एंड यूथ चीन के लंबे इतिहास में ऐसा 1900 ईस्वी के बाद ही हुआ कि युवक विभिन्न आंदोलनों तथा विद्रोहों में अग्रणी होने लगे। युवकों विशेष तौर पर छात्रों ने क्रांति के प्रथम चरण में कई तरह से मुख्य भूमिका अदा की। युवा वर्ग जो सदियों से अराजकता और शांति के कालों में सत्ता के समक्ष सिर झुकाता चला आ रहा था, वह जैसा कि मेरी सी राइट दर्शाती है, अकस्मात ही राष्ट्र की सर्वाधिक स्पंदनशील शक्ति हो गए। सडनली बिकेम द मोस्ट वाइब्रेंट फोर्स इन द नेशन। नए युवा वर्ग का प्रभाव तथा सम्मान उसकी संख्या से बढ़कर था। ऐसा विशेषकर इसलिए था क्योंकि युवक बहादुर, साहसी तथा बुद्धिमान थे तथा अपने उद्देश्य को अन्य सभी बातों के ऊपर मानते थे। यद्यपि वे पुरातन संभ्रांत वर्ग तथा उनके विभिन्न गढ़ों के विनाश के पक्ष में थे, तथापि उन्हें सम्मान मिलता था। उन्हें वह सामाजिक स्थिति विरासत में मिली थी जो चीन में शिक्षित लोगों को मिलती थी। उन्होंने सैन्य प्रशिक्षण संस्थाओं, सेना तथा चीनी समाज के विभिन्न स्तरों में प्रवेश करके उन आवेगपूर्ण विचारों को आकार दिया जो विदेशों में प्रचलित थे। वे चीनी छात्र जिन्होंने अपनी शिक्षा जापान में प्राप्त की थी, राजनीतिक रूप से सर्वाधिक सक्रिय थे। कुछ क्षेत्रों में फ्रांसीसी हिंद चीन तथा ब्रिटिश बर्मा से विभिन्न प्रकार के विचार ग्रहण कर लौटे छात्र भी अत्यंत सक्रिय थे, परंतु अमेरिका या यूरोप से लौटे छात्र तुलनात्मक रूप में उम्र में छोटे थे तथा साथ ही वे तकनीकी विषयों के छात्र थे। उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन में बहुत ज्यादा रुचि नहीं ली। यद्यपि आंदोलन में युवा वर्ग की भूमिका को कम नहीं आंका जा सकता, तथापि उनके क्रांतिकारी संघर्ष में कुछ कमियां थी। उदाहरण स्वरूप, मेरी रैंकिन के विचार में वे इतने शहरी और छात्र समुदाय के जीवन की ओर इतने उन्मुख थे कि अलग-अलग क्षेत्रों में बृहत् संघर्ष उन्हें उपयुक्त नहीं लग सकता था, बल्कि वे शीघ्र परिणाम चाहते थे। शक्ति जो राष्ट्रीय शक्ति, वैयक्तिक स्वतंत्रता तथा वैज्ञानिक उपलब्धियों के आधुनिक विश्व का एक अंग बनने के लिए अवसर प्रदान कर दे। दे वेयर टू अर्बन टू ओरिएंटेड टुवार्ड्स द लाइफ ऑफ स्टूडेंट सर्कल टू फाइंड ए लार्ज स्ट्रगल इन आइसोलेटेड एरियाज कॉन्जेनियल रादर दे वॉन्टेड क्विक रिजल्ट डेट वुड ओपन अपॉर्चुनिटी टू बिकम ए पार्ट ऑफ ए मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ ए नेशनल पावर इंडिविजुअल लिबर्टी एंड साइंटिफिक अचीवमेंट। लड़कियां तथा युवा स्त्रियां। लड़कियां तथा युवा स्त्रियां, गर्ल्स एंड यंग वुमेन। चीनी समाज में महिलाओं की स्थिति में तीव्र गति से सुधार हो रहा था। अनेक लड़कियां जो पहले अपने घर के आंगन की चार दीवारी में रहती थी, अब प्राइवेट तथा सरकारी स्कूलों में जाने लगी। मेरी रैंकिन के विचार में इन स्कूलों की लड़कियों तथा युवा स्त्रियों ने क्रांतिकारी युवा आंदोलन में प्रमुख भूमिका अदा की और 1908 ईस्वी की तात्सु मारू घटना उन्हें देशभक्तिपूर्ण प्रदर्शनों की मुख्य धारा में ले आई। बड़ी संख्या में स्त्रियों के विरोध सभाएं की बड़ी संख्या में स्त्रियों ने विरोध सभाएं की, प्रदर्शन किए तथा राष्ट्रीय अपमान पर खुल्लम खुल्ला अप्रसन्नता जाहिर की। इस विरोध में उन्हें अनेक प्रकार के दुख उठाने पड़े। उन्होंने भी क्रांति की तीव्रता को बढ़ाया। उन्होंने कुआंगचोउ, फूचोउ, शंघाई तथा अन्य अनेक स्थानों पर विभिन्न संगठनों का निर्माण किया। 20वीं सदी के पहले दशक के अंत तक पूर्ण अनुशासित स्कूली छात्राओं तथा उनकी शिक्षिकाओं द्वारा शोषण के विरुद्ध अवज्ञा की एक लहर इस हद तक उठ खड़ी हुई थी कि यह एक नया प्रारूप बन गई। छीयू छीन, जिसे 1907 ईस्वी में फांसी दे दी गई, तथा सोफिया चांग जैसी महिलाओं के नाम की चीन के घर घर में चर्चा होने लगी थी। कुआंगचो की मल्लाह स्त्रियों ने चीन में स्त्री अधिकारवाद को एक नया मोड़ दिया। ये महिलाएं चीनी इतिहास में संभवतः पहली नर्सें थीं तथा इन्होंने युद्ध भूमि में क्रांतिकारियों की तरफ से कार्य किया, बल्कि कुछ क्षेत्रों में तो महिलाओं ने स्वायत्त शासन की नई प्रादेशिक सभाओं में भाग लेने का अधिकार प्राप्त कर लिया। और यहाँ पेचिंग की महिलाएं नामक पत्रिका ने मुख्य भूमिका अदा की। स्त्रियां अब अपनी स्वतंत्रता चाहने लगीं और इसका महत्व राजनीति से बाहर भी पड़ा। उन्होंने पदबंध परंपरा तथा स्कूलों में प्रवेश पर प्रतिबंधों को चुनौती देना प्रारंभ कर दिया। कुछ क्षेत्रों में ऐसा करने में उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ी। उन्हें बढ़ती संख्या में सार्वजनिक स्थानों पर देखा जाने लगा। उनकी स्थिति और आकांक्षाओं में परिवर्तन उतना ही तीव्र तथा विलक्षण था जितना कि कुल मिलाकर युवा वर्ग की भूमिका में अस्थायी एवं अनुक्रमणीय परिवर्तन। इस अर्थ में, जैसा कि मेरी सी राइट इंगित करती है, यह एक बृहत सामाजिक क्रांति का विशिष्ट चिन्ह था। इट वॉज द हॉलमार्क ऑफ ए मेजर सोशल रिवॉल्यूशन। प्रवासी चीन, ओवरसीज चाइनीज। प्रवजन के लिए विभिन्न वैधानिक बाधाओं के बावजूद विभिन्न क्षेत्रों, खासकर दक्षिण पूर्वी प्रांतों के चीनवासी बड़ी संख्या में दक्षिण पूर्व एशिया में बसने हेतु बाहर जा रहे थे। कुछ ही समय पहले उन्होंने अफ्रीका तथा अमेरिकी महाद्वीपों में भी उत्प्रवास करना प्रारंभ कर दिया था। उनमें से अधिकांश ने विभिन्न प्रकार के शिल्पों, जिनकी इन देशों में मांग की थी, की आपूर्ति करके अपना भाग्य बनाया। 1911 ईस्वी की क्रांति के प्रारंभ होने तक इन्होंने अपनी नई वासभूमि में धूल मिल जाने का कोई प्रयास नहीं किया था। जैसा कि मेरी सी राइट बताती है, उनकी सारी निष्ठा चीन में उनके मूल स्थान पर केंद्रित थी। लेकिन सर्वाधिक जिसकी वे आशा कर सकते थे वह था स्वदेश धन भेजना तथा अंत में वहां दफनाया जाना। ऑल दियर लॉयलिटीज वेयर फोकस्ड ऑन दियर नेटिव प्लेस इन चाइना, बट द मोस्ट दे कुड होप फॉर वाज टू सेंड मनी होम एंड इवेंचुअली टू बी बरीड देयर। इनमें से अधिकांश प्रवासी चीनियों ने नए चीन की स्थापना के लिए विभिन्न संगठन बनाए। देश के लगभग सारे क्रांतिकारी संगठन इन संगठनों का समर्थन विशेषकर धन के रूप में चाहते थे। वस्तुतः धन ने स्थिति को क्रांतिकारियों के पक्ष में मोड़ दिया। यद्यपि प्रवासी चीनी क्रांति के केंद्र में न थे, तथापि उनकी धनापूर्ति की क्षमता और समाचार पत्रों द्वारा उन्होंने जो प्रचार किया उसके प्रभाव को कम नहीं किया जा सकता। सर्वहारा वर्ग, द प्रोलिटेरिएट। आधुनिक उद्योगों के आगमन ने श्रमिक वर्ग का निर्माण किया। रेलवे खनन तथा वस्त्र उद्योग जैसे विभिन्न आधुनिक उद्योगों में नियुक्त श्रमिक यद्यपि संख्या में कम थे, तथापि नाजुक अवसरों एवं स्थानों पर उनका वृहत संकेंद्रण क्रांतिकारी संघर्ष के लिए अत्यधिक सहायक सिद्ध हुआ। इस संघर्ष के दौरान, जैसा कि जॉन शेजनो बतलाते हैं, हड़तालों का स्वरूप निश्चित रूप से राजनीतिक होता था, न कि आर्थिक तथा क्रांति के शुरू होने के ठीक पहले के काल में चीन में अधिकतम हड़तालें हुई। सर्वहारा वर्ग भी अपने समय के अनेक अन्य समूहों के साथ साम्राज्यवाद विरोधी सर्वहारा वर्ग भी अपने समय के अनेक अन्य समूहों के साथ साम्राज्यवाद विरोधी भावना में शरीक था, तथा इसका प्रदर्शन उन्होंने तात्सु मारू घटना के बाद जापानी जहाजों से माल खाली करने से इनकार करके किया। इनमें अधिकांश श्रमिक वे थे जो गरीब किसान थे तथा अभी भी अपने ग्रामीण संबंधों को बनाए हुए थे। उनका सबसे बड़ा योगदान इसी बात में था। मेरी सी राइट का कहना है कि वे ही वह माध्यम थे जो दूसरों द्वारा प्रारंभ किए गए विरोध को कारगर बना सकते थे। चूंकि वे समय समय पर अपने अपने घर मिलने जाया करते थे, इसलिए वे उन स्रोतों में एक थे जिनके माध्यम से नवीन विचार तथा कथित सर्वाधिक गतिहीन चीनी कृषक वर्ग के सर्वसाधारण को प्रभावित करने लगे थे। परंतु जैसा कि छन थिए चियन सर्वहारा वर्ग से संबंधित विचार व्यक्त करते थे, इससे पहले कि सर्वहारा वर्ग राजनीतिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर पाता, उसे थोड़ा समय और लगा। प्रोलिटेरिएट वुड टेक सम टाइम बिफोर इट कुड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द पोलिटिकल एरिना। उक्त वर्णित उभरते वर्गों के कुछ ध्यानाकर्षक लक्षण थे। परंपरावादी चीनी समाज में उन सबको असामान्य मुसीबतें झेलनी पड़ रही थी। उन सबकी दशा ऐसी थी, विदेशी शक्तियों द्वारा चीन को होने वाली हानि से वे अधिकांश लोगों से अधिक परिचित थे। वे सब ऐसी स्थिति में थे कि उन्हें लगता था कि कार्यवाही संभव है, क्योंकि उन सबको विद्यमान संस्थाओं के संरक्षण में बहुत कम रुचि थी। इसलिए उन्होंने एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी दल की स्थापना की। सुनयात सेन की भूमिका, रोल ऑफ सुनयात सेन। सुनयात सेन, जिन्हें चीन में सुन चुंग शान के नाम से जाना जाता है, 1911 ईस्वी की क्रांति के न केवल प्रवर्तक थे बल्कि इसके प्रेरक भी थे। कई वर्षों से वे चीन को भ्रष्ट विदेशी राजवंश के शासन से मुक्त कराकर एक नई जनतांत्रिक सरकार की स्थापना करने का प्रयास कर रहे थे, ताकि चीन को आधुनिक विश्व में उसके यथोचित स्थान पर स्थापित किया जा सके। प्रबल इच्छा शक्ति और अत्यधिक आकर्षक व्यक्तित्व वाले सुन ने अपने विचारों की व्यापकता तथा अपने दूरदर्शिता की सूक्ष्मता में अपने समय के समस्त अन्य क्रांतिकारियों को पीछे छोड़ दिया था। इस क्रांति की साकार आत्मा सुन ने क्रांति को उसके निर्देशक सिद्धांत तथा इसकी कार्य योजना प्रदान की। अपने अधिमानित आदर्शवाद के बावजूद वे केवल एक आदर्शवादी विचारक ही न थे, बल्कि आर्थिक एवं राजनीतिक वास्तविकताओं का जो बोध उन्हें था, वह चीन में उनसे पहले किसी को न था। उनके चीन जागृत करो संगठन सिंग चुग हुएई, जिसकी स्थापना 1894 ईस्वी में हुई थी, ने चीन में व्याप्त सामाजिक तथा राजनीतिक अराजकता एवं विदेशी शक्तियों की लूट का मुद्दा उठाया। इस संगठन के द्वारा सुनयात सेन ने मंचूरियाइयों को निष्कासित करने, चीनी शासन की पुनः स्थापना करने तथा एक गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना करने का झंडा खड़ा किया। 1905 ईस्वी में उन्होंने थुंग मंग हुएई की स्थापना की, जो चीन में बुर्जुआ जनतांत्रिक क्रांति के प्रारंभ को चिन्हित करती है। फिर उन्होंने सान मिन चुई अथवा तीन जन सिद्धांतों, थ्री पीपल्स प्रिंसिपल्स की अपनी कल्पना प्रस्तुत की, जो राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी तथा जन आजीविका, पीपल्स लिवलीहुड से बनी थी। सुन ने चीनी जनता को युगों की नींद से जगाया, उन्हें राष्ट्रवाद की एक नई भावना प्रदान की तथा नए राष्ट्र के पुनर्निर्माण का एक व्यापक कार्यक्रम प्रदान किया। धन इकट्ठा करने वाले के रूप में उनकी ठोस भूमिका, क्रांति के दौरान विदेशियों से उनका कुशलतापूर्वक बर्ताव तथा क्रांति के संपूर्ण अराजकतापूर्ण काल में उनके आशावाद ने मांचुओं को उखाड़ फेंकने में एक निर्णायक भूमिका अदा की। गुप्त संगठन, सेक्रेट सोसाइटीज। यद्यपि गुप्त संगठन चीन में उसी समय से सक्रिय थे जब मांचू सत्ता में आए, लेकिन मांचूवाद के विरुद्ध वे तभी सफल हुए जब छिंग राजवंश का सितारा डूबने लगा तथा आर्थिक ह्रास एवं सामाजिक अव्यवस्था सर्वव्याप्त हो गई। वस्तुतः उस काल की उग्रता इन गुप्त संगठनों की गतिविधियों में परिलक्षित होती है, जो असंतुष्ट जनों के लिए एक परंपरागत आश्रय थे। यह संगठन सभी पृष्ठभूमियों के लोगों को दाखिल करते थे तथा उनका स्पष्ट आदर्श वाक्य था, अधिकारीगण और विद्वान प्रत्येक हमारे दिल में लिया जाता है, संदेशवाहक, सेवक तथा सैनिक किसी को भी लौटाया नहीं जाता है, ऑफिशियल्स एंड स्कॉलर्स एवरी वन इज रिसीव्ड इन टू आवर रैंक्स, रनर्स, सर्वेंट्स एंड सोल्जर्स नो बडी इज टर्न्ड अवे। क्रांति के प्रारंभिक चरणों में गुप्त संगठनों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि क्रांति के विकसित होने के साथ उनकी भूमिका कम हो गई। यह सर्वसंभाव्य है कि अधिकांश सैनिक जिन्होंने वुछांग विद्रोह में भाग लिया था, किसी न किसी गुप्त संगठन के सदस्य थे। माओ तजतुंग तथा जहूद ने गुप्त संगठनों की भूमिका को बहुत महत्वपूर्ण माना। कलाओ हुएई, जो एक पूर्णतः छिंग विरोधी गुप्त संगठन था, का आधार यांगतज घाटी में था तथा इसकी शाखाएं प्रवासी चीनियों के मध्य थी। चुंग नान हुएई, युंग हुआ हुएई, वन युए प्सरा, कांग चीन हुएई, शान थियेन हुएई चीन के विभिन्न अन्य भागों में सक्रिय थे। इन गुप्त संगठनों को दूसरे प्रकार के संगठनों की तुलना में अनेक फायदे थे, चूंकि भाषण देने, सभा करने तथा प्रकाशन जैसे साधारण चीजों तक की स्वतंत्रता न थी, इसलिए गुप्त संगठन सरकार के विरुद्ध आम कार्यवाही के लिए अच्छे माध्यम थे। इन गुप्त संगठनों का आधार सर्वाधिक गरीब लोगों में था, और इसलिए लोगों से अच्छे संपर्क स्थापित करने तथा उनके बीच दृढ़ आधार बनाने में इनका उपयोग हो सकता था।